शुक उवाच इत्थं विरिञ्च स्तुत कर्म वीर्य इत्थं विरिञ्च स्तुत कर्म वीर्य प्रादुर्भवो वमृता भूरादित्यम् प्रादुर्भवामृत भूरादित्यम् चतुर्भुज शंख गदाब्ज चक्र चतुर्भुज शंख गदाब्ज चक्र पिशंग वासा नलिन ये तक्षण पिशंग वासा नलिन यते क्षण श्री सुक उवाच इत्थं विरिञ्च स्तुत कर्म वीर्यः प्रादुर्भभुव मृत भूरादित्याम् चतुर्भुज शंख गदाब्ज चक्रः पिशंग वासा नलिन यते क्षणः श्री सुक उवाच इत्थं विरिञ्च स्तुत कर्म वीर्यः प्रादुर्बभुव अमृत भूरादित्याम् चतुर्भुज शंख गदाब्ज चक्रः पिशंग वासा नलिन यते क्षणः
अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब ब्रह्मा जी इस प्रकार भगवान के कार्यों एवं पराक्रम का जसोगान कर चुके तो भगवान जिनकी एक सामान्य जीव की भांति कभी मृत्यु नहीं होती अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। उनके चार हाथ शंख चक्र गदा तथा पद्म से सुशोभित थे, वे पीताम्बर धारण किए हुए थे और उनकी आंखें खिले हुए कमल की पंखुड़ियां एक जैसी प्रतीत हो रही थी। तात्पर्य, इस श्लोक में अमृत भू शब्द महत्वपूर्ण है। कभी कभी भगवान सामान्य बालक की भांति जन्म लेकर प्रकट होते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि जन्म मृत्यु बुढ़ापे से प्रभावित होते हैं। भगवान के अवतारों के प्राकट्य तथा उनके कार्यकलापों के विषय में समझने के लिए बहुत बुद्धिमानी चाहिए। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः, मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोभाव एवं उनके कार्यकलाप दिव्य होते हैं। भगवान को भौतिक कार्यकलापों से कोई सरोकार नहीं होता। जो कोई भगवान के प्राकट्य तिरोधान तथा कार्यकलाप को समझता है वह तुरंत मुक्त हो जाता है। इस शरीर को छोड़ने पर उसे फिर भौतिक शरीर कभी नहीं धारण करना पड़ता, अपितु वह सीधे स्वर्ग को चला जाता है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं नैति मामेति सुअर्जुन। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानं तिमिरांध्यस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामहं ददाति सपदान्तिकं। वंदे अहम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथसंनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानितं स नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ, आने में लेट हो गया मुझे। तो इस श्लोक में भगवान वामन देव की प्राकट्य का वर्णन हुआ है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने आकर के कश्यप और अदिति का घर में भगवान का खूब स्तुति किए, भगवान के आविर्भाव का कन्फर्म वर्णन किए। उसके बाद में भगवान के कार्यकलाप को स्तुति करने के बाद उपयुक्त समय में श्रावण नक्षत्र द्वादशी तिथि में भगवान कश्यप महर्षि के घर में माता अदिति के गर्भ से किस प्रकार आविर्भूत हुए। तो सुखदेव गोस्वामी श्लोक में एक शब्द कहते हैं जिनको प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में चर्चा किए हैं, अमृत भू। भगवान प्रकट होते हैं और हम लोग ही प्रकट होते हैं, तो इसमें से ये अंतर है कि भगवान अमृत भू है, हम लोग समृत भू है। हम लोग और भगवान में यही अंतर है, अमृत और मृत हम लोग है। यद्यपि भगवान कभी कभी सामान्य शिशु के आकार धारण करके प्रकट होते हैं, लेकिन फिर भी वो सामान्य नहीं है, पूरा असामान्य है। हम भगवान के कोई भी अवतार को हम देखते हैं तो उनके इस भौतिक संसार के कोई भी नियम उनके ऊपर लागू नहीं हो सकता। वो हमेशा आपने आत्ममाया उनके माया से अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं, उनको ये बहिरंगा शक्ति छू नहीं सकता। इसलिए अमृत भू जब भगवान प्रकट हुए तो हम लोग प्रकट होने में ये वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं कि उन्होंने चार हाथ था उनका चतुर्भुजम। चलो हम लोग का दो हाथ होता है, चार हाथ कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हम लोग जो प्रकट होते हैं हाथ तो होता है लेकिन हाथ में कुछ समन नहीं होता, कि शरीर में कोई कपड़ा नहीं होता। भाई कम से कम एक आध मीटर, ज्यादा नहीं 6 मीटर का कपड़ा पूरा नहीं, आधा मीटर तो कम से कम कुछ नहीं कपड़ा लेकर आए थे। लेकिन भगवान का वर्णन है विसंग वासम, बिल्कुल पीत वसन धारण किए थे और सब अलंकार आभरण धारण किए थे और चार हाथ में चार आयुध धारण, दिव्य आयुध धारण किए थे। तो ये सब लेकर के भगवान आए थे प्रकट हुए, ऐसे नहीं कि आने के बाद फिर रोएंगे, रोने के बाद फिर साल भर लगेगा खड़ा होने में, 2-4 साल प्रैक्टिस करने में, फिर कोई शस्त्र शस्त्र उठाने के काबिल होंगे, वो भी फिर हम लोग तो पूरा जिंदगी बीत गया नहीं उठा पाते कोई लेकिन भगवान जिस समय प्रादुर्भाव हुआ उनका, उसी समय में भगवान होकर के प्रकट हुए थे। तो इसलिए ये हमको समझ लेना होगा कि आजकल इवन भारतवर्ष में भी जो भगवत क्षेत्र है, भगवान हमेशा भारतवर्ष में आते हैं, यहाँ पर लोगों का भी इतने गलत धारणा है कि बहुत लोग आज भी भगवान बनते हैं और बनाते जाते हैं। हाँ, यद्यपि भगवान कोई कोई जाकर कहाँ कहाँ जेल में यहाँ पहुंच चुके, लेकिन फिर भी नाता नहीं छोड़ता उनका फिर भगवान। क्यों? लोगों का भी समझते हैं, कई संस्था ऐसे प्रचार भी करते हैं कि हम सब तो भगवान है, क्या अंतर है, हम लोग थोड़ा भी फंसे हुए हैं, जब साधना करके उस स्तर को आ जाएंगे तो भगवान बन जाएंगे। नहीं, ये भागवत सिद्धांत है, भगवान कोई बन ही नहीं सकता। कोई साधन से, प्रयास से, किसी प्रकार के उपाय से भगवान बना नहीं जा सकता। भगवान जो है वो बने हुए हैं, वो हमेशा बने रहते हैं। ये कोई पोस्ट पोजिशन है ही नहीं कि हम इन पोस्ट में है अभी चला जाएंगे हम ले लेंगे, ऐसा पोस्ट पोजीशन भगवान नहीं है। भगवान नित्य है, नित्य भगवत्ता उनके साथ हमेशा रहता है। भगवान उसको निकाल करके सामान्य शिशु के रूप में किसका यहाँ अदिति के वहां प्रकट होने आए, लेकिन फिर भी प्रकट होते समय भगवत्ता छलक रहा है। प्रकट होने से पहले ब्रह्मा आकर के स्तुति किए, हमको कोई स्तुति करेगा ब्रह्मा? अरे पता ही नहीं चलेगा ब्रह्मा क्या, हमारे माता पिता को पता नहीं चलेगा डॉक्टर को पता नहीं चलता मेल होगी फीमेल होगा। लेकिन भगवान के प्रकट होने से पहले स्वयं विधाता ब्रह्मा आकर के उन्हें ग्लोरिफिकेशन किए। इसमें पहले लाइन में सुखदेव गोसाई कहते हैं कि ब्रह्मा के तरह विशेष भाव से स्तुति होने के बाद में भगवान को प्रकट होते हैं जो होते हैं। तो इस प्रकार के सर्वांग लक्षण सर्व आयुध सब अलंकार सब आभरण से युक्त होकर के प्रकट होते हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से हम लोग को जान लेना चाहिए कि भगवान जन्म से भगवान, जन्म से पहले भगवान, जन्म के बाद भगवान, हमेशा भगवान। ऐसा नहीं कि वो जन्म होने के बाद थोड़ा प्रैक्टिस किए, थोड़े बहुत स्कूल लिखा पढ़ा किए, कुछ बहुत प्रयास किए, कोचिंग फोचिंग लिए और प्रयास करके फिर भगवान बन गए, ऐसे नहीं। जैसे हम लोग कोई स्तर प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, कोई प्रयास करके भगवान नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी एक बार कहते थे, उनको ऐसे सामना तो बहुत हम लोग को करना पड़ता है, प्रभुपाद जी कहते थे अगर कोई व्यक्ति गर्ड के बारे में जानता है, गर्ड के बारे में थोड़ा सा जानकार है उसको, वो कभी भी स्वप्न में सोच नहीं सकता कि मैं कभी गर्ड बन सकता हूं। जो सोचते हैं कि हम गर्ड बन जाएंगे या बने हुए हैं, तो गर्ड जीओडी नहीं हो सकते, डीओजी हो सकते हैं, ऐसे गर्ड नहीं हो सकते, अरे संभव ही नहीं, हो ही नहीं सकता, भगवान को बना नहीं जा सकता। भगवान के सबसे प्रथम ज्ञान को यही जानना चाहिए कि भगवान कोई पोस्ट नहीं है, कोई पोजिशन नहीं है, किसी प्रकार से कोई प्रयास करके साधन करके भजन करके भगवान बन ही नहीं सकता। बल्कि इन भगवान के बारे में कोई जानना भी चाहेंगे तो भी संभव नहीं है। भगवान स्वयं कहते नाम विदु सुरगणा प्रभवंती न महर्षया, अरे कोई देवी देवता तो नहीं, बड़े बड़े सिद्ध महर्षि ऋषि भी नहीं जान सकते, और तो और भगवान स्वयं ही अपने बारे में सारे नहीं बता सकते, अनंत है। जिनका अंत नहीं है उनको कैसे अंत किया जा सकता, असंभव है। जब अर्जुन को भगवान ने अपने विभूति बताने लगे, अर्जुन बोला आपके बारे में जानना चाहता हूँ, भगवान मेरे बारे में भी नहीं बता सकता हूँ पूरा, तुझे किसे बताऊंगा, कुछ कुछ चुन करके बता सकता हूँ थोड़े बहुत, पूर्ण तो मैं भी नहीं बता सकता। और फिर बताने लगे भगवान ने विभूति अपने सारे बताते बताते अंत में कहते हैं अर्जुन अथवा बहुनाते न किम ज्ञाते न तवार्जुन, अब मैं ज्यादा और क्या बताऊं, तू ज्यादा क्या भी सुनेगा, तेरे भी टाइम खराब हो रहा है, मेरा भी टाइम खराब हो रहा है। केवल इतना ही जान लो विष्ठभ्याहम इदम कृष्णम, ये संपूर्ण चराचर जगत जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, विष्ठभ्याहम इदम जगत, ये संपूर्ण जगत सृष्टि एक अंशेन स्थितु, एक अंश में, ऐसे हाथ करके बताए होंगे नखाग्र में, बोले इसी में टिका हुआ है संपूर्ण जगत। और जब ये जगत को जानने के लिए हम सर फोड़ देते हैं, जान नहीं पाते हैं, मुझे क्या जानोगे, ये तो एक कुछ नहीं, एक अंश मात्र है जिसमें स्थित है, संपूर्ण जगत स्थित है। तो इस प्रकार इन भगवान के बारे में थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने इस श्लोक जो प्रभुपाद जी ने कोट किए हैं भगवद्गीता से, कि भगवान के बारे में कोई अगर जानना चाहेगा, भगवान स्वयं कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है, एवं यो वेति तत्वतः, उसको अगर कोई ठीक से तत्व से जान लिया ना तो क्या होगा, आपके जन्म के बारे में जानने से हमारा क्या होगा, दुनिया भर का कितने बार देर होता है किसी का हम ये नहीं रखते। बोले नहीं, मेरा बर्थडे के बारे में अगर जान लोगे, इसीलिए तो हम जन्माष्टमी मनाते हैं, भक्तों को सब पता है भगवान अजय है, अजो एम सन्नव्य आत्मा, अजय मतलब अजन्मा, भगवान का जन्म है ही नहीं, जन्म मृत्यु से परे हैं भगवान, ये तो सब भौतिक संसार की नीति, भगवान संपूर्ण अजन्मा है। लेकिन हम इस बात को अच्छी तरह से जानकर भी जन्माष्टमी उत्सव बड़ी भव्य रूप से करते हैं, अरे तो सबको बताते हैं अजन्मा भगवान की जन्मतिथि, अरे क्या बात है भाई, लिखते हैं कि अजन्मा पुरुष और उनके बर्थडे, उनके जन्मतिथि, ये कैसे जन्मोत्सव बनाते हैं, ये इसीलिए बनाते हैं कि अगर उन अजन्मा पुरुष का जन्मतिथि हम बनाएंगे तो हम हमारा जन्म से उबार पा जाएंगे, हम एक फायदा हमारा होगा, हम जन्म से बच जाएंगे, हमारा दोबारा जन्म नहीं होगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जन्म और कर्म मेरा ऐसा नहीं है जैसे आप लोग का थर्ड क्लास है, फोर्थ क्लास, ये दिव्य है, ये दिव्य जन्म कर्म के बारे में जो थोड़ा बहुत जान लेता है, कोई तत्व से जान लेता है, तो क्या फायदा होगा, न इस शरीर छोड़ने के बाद न इति, फिर यहां आना नहीं पड़ेगा, फिर भगवान के पास जाएंगे, इसी के लिए जन्माष्टमी तो बनाते हैं हम, कि हमारा जन्म का एंड हो जाए, उनके जन्म पालन करें तो हमारा जन्म खत्म हो जाएगा। उनका जन्म तो होता ही नहीं, लेकिन उनके जन्म के बारे में प्रयास करेंगे जन्म मनाने समझने के लिए तो हमारा जन्म बंद हो जाएगा। तो इसलिए ये भगवान के जन्म और कर्म सब दिव्य स्तर में है। अगर उसको जानने के लिए प्रयास करेंगे तो भी कहीं से भगवान खुद कहते हैं कोई नहीं जान सकता, न मैं विदुः सुरगणा, बड़े बड़े देवता लोग ब्रह्मा तक नहीं जान पाए, ऋषि महर्षि लोग जान पाए, तो हम कैसे जानेंगे तत्वता, वेदी तत्वता कैसे जानेंगे तत्व में। भगवान के बारे में जानने के लिए भी असंभव है तो कैसे जाना जाए। भगवान बोलते हैं जानने से हमारा काम बनेगा, तो जानने का एक ही भी उपाय है भगवान के बारे जानने। ईश्वर कृपाले स है छे जहारे सही ईश्वर तत्व जानिवार पारे। ईश्वर के तत्व को अगर जानना चाहते हैं तो ईश्वर की कृपा ही एकमात्र साधन है। बिना हरि कृपा में हरि के बारे में जानना असंभव है। तो उनके बारे में जानने के लिए उनकी मदद चाहिए, और उनके बारे में सुकलेशन क्या करें, उनके मदद से कुछ उनके बारे में जान सकते हैं। अगर जानेंगे तो हमारा काम बने। तो ये मनुष्य जीवन का सफलता पूर्णता केवल इतने में निर्भर करता है, इतने में है कि पूरे शक्ति सामर्थ्य लगा करके उनके जन्म और कर्म को समझ ले। अगर इतना समझ ले तो हमारे मनुष्य जन्म का पूर्ण सफलता प्राप्त होगा, फिर अगर हमें भौतिक संसार में आना नहीं पड़ेगा। हम जो सुखी होना चाहते हैं, हमेशा जीते रहना चाहते हैं ना, नहीं हम सभी भौतिक संसार के जितने प्राणी है, बाकी तो बेचारा जानते हैं मनुष्य जी थोड़ा बहुत बुद्धि रखते हैं, वो पूर्ण बुद्धि लगा करके पूर्ण प्रयास से एक ही प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं, क्या सुखी रहना चाहता हूं। सुखी रहने के लिए मुझे जीना भी पड़ेगा, मरना नहीं चाहता हूं और जीना चाहता हूं। कैसे जीना चाहता हूं, सुखी रहकर जीना चाहता हूं, दुखी नहीं होना चाहता। मतलब सुखी होते होते जीने का ये जो अभिलाष, अब हम गड़बड़ जगह में आ गए, इस घर में साइन बोर्ड लगा हुआ है मृत्यु लोकम दुखालयम, और हम दोनों ही नहीं चाहते। हम दुख भी नहीं चाहते और मरना भी नहीं चाहते, और आ गए जहां दुख भी मिलता है मरना भी होता है। रंग एड्रेस में आ चुके। अरे भैया तुझे सुख चाहिए, तू ये दुख के घर में क्यों आया, तू जीना चाहते है मृत्यु लोक में क्यों आया, ये दोनों ही काम नहीं हो सकता। इधर अगर आ चुके हैं अब क्या करेंगे, रंग साइड ले लिए, इधर आ चुके हैं वन वे ट्रैफिक, अब कैसे जाएं। अब जाने का एक ही उपाय है, अगर इस रंग एड्रेस में आ गए जाने के एक ही उपाय है, पता लगाओ कहाँ है, साइड टर्न करना है, यू टर्न लेकर फिर जाओ। जब तक यू टर्न नहीं लेंगे तब तक तो आगे और बढ़ते जाएंगे। दुखालयम असासतम, बारंबार जन्म मृत्यु से ऐसे फंसते रहेंगे इसे निकल ले सकते। कभी ना कभी हमको यू टर्न लेना ही पड़ेगा। तो आप लोग तो सब टर्न मार चुके हैं, राधा राय बिहार में आ चुके हैं, अब यू टर्न में हैं, लेकिन टर्न में आकर भी अगर सही प्रकार से सही टाइम से टर्न में फिर भी रेड लाइट हो गया तब भी फिर रुक जाएंगे, अटक जाएंगे। तो इसलिए भगवान की जन्म और कर्म के बारे में जानना, यही प्रॉपर ट्रेनिंग लेना है। भगवान स्वयं कहते हैं कि अगर मेरे जन्म और कर्म के बारे में आप ठीक से जान लोगे तब आपका रिटर्न होगा, फिर तो मेरे पास आओगे, फिर आपके संसार में आना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए भगवान और भगवान के अनेक अवतार जो ये जन्म लीला करते हैं, जैसे वामन द्वादशी वामन देव प्रकट होते हैं, ये किस लिए करते हैं। भगवान कुछ काम के लिए आने का जरूरत नहीं है। अरे हमारे से कई भौतिक संसार में यहां भी आप मंदिर में भी प्रभु जी अगर कुछ काम करना खुद थोड़ी जाते हैं, फोन कर देते हैं, फोन करने से काम हो जाता है, उनको जाना जरूरत थोड़ी पड़ता है ना। जब हम लोग ऐसे फोर्थ फिफ्थ क्लास का आदमी केवल फोन करके काम कर लेते हैं, जाना जरूरत नहीं पड़ता, मैसेज भेज देने से काम हो जाता है, तो भगवान को क्या करना पड़ेगा। उनको फोन भी नहीं करना, मैसेज भी नहीं करना, उनको इच्छा मात्र से ओनली ही विल थिंक, वो केवल सोच लें कोई मैसेज करना फोन करना जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण प्रकृति उनके अंदर में काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि उनके अंदर कुछ नौकर चाकर हैं, अरे कुछ किया संपूर्ण प्रकृति, सूयते सचराचरम मयाधक्षेण प्रकृति, उन्हीं के अध्यक्षता में संपूर्ण प्रकृति काम कर रहा है चराचर जगत में। तो उनको तो केवल इच्छा मात्र करना है, इच्छा मात्र से कुछ भी हो सकता है, उनकी इच्छा से तो सृष्टि प्रलय स्थिति सब कुछ होता है, तो इच्छा मात्र में सब काम हो सकता, तो उनको बारंबार जन्म लेना क्या पड़ा। अरे जन्म भी लेते कोई, हम लोग कोई साधारण को भी आए कि लोग बड़े लोग अगर जाते हैं कहीं काम में, जरूरत पड़ा जाने की, तो कम से कम अपना स्टेटस में जाते हैं, अपना गाड़ी अपने ड्रेस फेस पहन करके अपना शिप में जाते हैं। ये भगवान आते हैं, भगवान दी सुप्रीम पर्सन, उनसे बढ़कर वीआईपी कोई हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं है। लेकिन वो भी आते हैं किसी काम में, इमरजेंसी कोई विजिट किए तो अपने हिसाब से प्रोटोकॉल के साथ आते, अपने साथ समन अपना क्या बोलते हैं वो टैंकर जो आते हैं नेम प्लेट अपना ये सब लेकर आते हैं। लेकिन भगवान आते हैं क्या भगवान के रूप, कभी तो मछली बनकर आते हैं, कभी कछुआ बनकर आते हैं, कभी हाफ मैन हाफ लायन बनकर आते हैं, कभी बोना बनकर आते हैं, कभी क्या बनकर, अरे ये क्या भाई आप भगवान है आपका रूप। इसीलिए तो बहुत लोग संसार में भगवान को नहीं मानते। मैं सुना था विदेश में एक इस्कन के शुरुआत में केस हुआ था, बहुत बड़ा कोर्ट केस हुआ था, किसी माने में केस हुआ था, प्रभुपाद जी जब थे तभी भी वो कोर्ट में उन किसी ने जाकर के जो हमारे विरोधी पक्ष ला करके दिया, बोला ये लोग दिमाग खराब वो लोग की भगवान करके पूछते हैं ये कि ऐसी अद्भुत जीव है जो चिड़ियाखाना में नहीं मिलता, न श्रुत्वा न दृष्टवा न सुनते न देखे हैं न क्या है, वो लाके जज को दिखाया हो नरसिंह भगवान की चीज, हाफ ज्ञान हाफ लायन, आप कोई पता है कोई जीके में पढ़े हैं इस बारे में सुने नो, बोले ये पागल है नहीं कोरे पागल है, तो उनको पूछते हैं बोलते हैं ये हमारे भगवान है, अब उनको मानेंगे उनके बाद क्या केस करेंगे। वो लोग बड़े बड़े बुद्धिजीव लोग जस्टिस, वो उनको भी समझ नहीं आता, वो की लयर को भी समझ नहीं आता, ये क्या है भाई, उनको भगवान मानते बोलते सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, उसका रूप का कोई ठिकाना नहीं, भगवान क्या बोले ये उसका यूनिफॉर्म है, आप बोलते हैं कि ऐसे ऐसे आधा सिंह है आधा आदमी है क्या करता है कुछ समझ नहीं आता। अरे वो तो फिर भी अगर कोई कछुआ लेकर दिखा देता तो ये तो अच्छा हुआ कि हम मंदिर में फोटो मिल गया उसको नरसिंह देव का, ये तो फिर भी थोड़ा ठीक ठाक था, क्योंकि नरसिंह देव का ऊपर तो बहुत सारे अस्त्र शस्त्र लिए हैं, नाग दिखाई पड़ रहा है बड़े भयानक, वो तो कुछ भी डरेगा कुछ करेगा, वो भाग्य अच्छा था कि हमारा मंदिर में कछुआ मछली का पिक्चर नहीं लगाते हैं, अगर कहीं आपका दशावतार फसावतार से कोई वो फोटो ले लिया होता ना जैसे नरसिंह देव प्राइम लोकेशन में, ऐसे कोई कच्छप अवतार की मत्स्य अवतार को ले गए होता तब तो बिल्कुल दुम हो जाता, बोले ये पागल हो गए को रही ये क्या है, ये मछली को भगवान मानते कछुआ को भगवान मानते, यहाँ तो कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं कोई पीत वासन नहीं, ये तो वामन अवतार में कम से कम पीतंग वासम पीत वस्त्र धारण के तो साइज छोटा कर दिया था आपने आपको साइज छोटा छोटा किए वामन के, लेकिन बाकी सारे अस्त्र शस्त्र दिव्यता सब था, लेकिन मछली में क्या दिव्यता होगा, कछुआ में क्या दिव्यता होगा, घोड़ा में क्या दिव्यता होगा, हर चीज से बता रहा हूँ भगवान हुए हैं सब हुए हैं ये सब, तो ये तो उनको मिला नहीं है फोटो, अगर वो दिखा देते तो और परेशानी होता, इनको नहीं समझ आते, लेकिन ये केस खारिज हो गया। क्योंकि भगवान चाहे कछुआ बने चाहे मछली बने चाहे नरसिंह बने चाहे कुछ भी बने, भगवान तो भगवान है ना, वो मूर्ख किसी को समझ में नहीं आए तो इसमें भगवान का दोष क्या है, इस देयर प्रॉब्लम। तो कभी कभी संत लोग कहते हैं कि अगर हमारे बम्बे में भी और भी पूरे भारतवर्ष में जो ब्लाइंड पर्सन है जो शुरू से देख नहीं पाते हैं ऐसे अंधे को काउंट किया जाए, कम से कम 20-25 हजार अंधे एक पिटीशन लिखेंगे, सब साइन करेंगे, बोलेंगे ये लोग सब ऐसे बोलते रहते हैं, हम तो देखते नहीं सूरज चंद्रमा, हम सूरज चांदनी हम दिखाई नहीं पड़ता, ये झूठे झूठे लिख करके पिटीशन साइन करके गवर्नमेंट को देंगे, बोले हमारा आंदोलन है हम नहीं देख पाते, क्यों उनका बात मानते हैं, हम इतने बड़े समूह है 25,000 अंधा हम मार्च करके बोलते हैं नाराबाजी करते हैं, ये सब बेकार बात है हम नहीं देख पाते, तो क्या उनकी बात माना जाएगा। तो पूरे संसार के जितने सारे अंधे हैं इस पर कितने हो हल्ला करे तो भगवान के बारे में क्या जानेंगे, बेचारे अंधे हैं कैसे जान पाएंगे। जैसे एक बार की एक ऐसी घटना हुआ था, एक गांव में 5 अंधे व्यक्ति थे, लेकिन अंधे तो आंख उन दिखाने पड़ता था लेकिन बाकी इंद्रिया उनका बड़े तेज था, सुनने में बोलने में और स्पर्श में बाकी इंद्रिया शक्ति बहुत भारी थे, तो उनके जो योग्यता था उनके पास में कई लोग उनके फॉलोअर हो गए थे, उनके शिष्य बन गए, सेवक बन गए थे। तो एक बार उस गांव में हाथी आया, हाथी आया तो सारे शिष्य लोग आते, बोले बोले गुरुजी हाथी आए। तो गुरुजी तो अब तक हाथी देखे नहीं थे, वो गुरुजी देखे कैसे, पढ़ते तो ब्रेल में, आजकल ब्रेल बुक अवेलेबल होगा ना, पढ़ते। तो गुरुजी बोले चलो, देख नहीं पाता हूँ लेकिन छूकर स्पर्श तो कर लूंगा। स्पर्श से वो जो अति पावरफुल उनका स्पर्श इंद्रिय होता है, कर लूंगा क्या। तो उनके शिष्य लोग उन लेकर के आए, वो पांच ही गुरु जी, पांच ही अंधे थे, उनको अपना अपना शिष्य लोग लेकर के आए। और आकर के जिस जिस तरफ से वो लोग आए, गुरु जी आकर के ये हाथी यही खड़ा है, खड़ा है गुरु जी। हाथी किसने आकर सामने तरफ से पकड़ा उसका सूंड को और ये पकड़ कर देखा, वो लिखा थे शिष्य अपना, बोला समझ गया समझ गया, ओके लेट अस गो। हाथी इशू कहते हैं, ये तो सांप ही है और क्या, सांप को हाथी कहते हैं, समझ गया चलो आपने सिद्धांत लिखा। दूसरा गुरुजी साइड में आए थे, वो आके पैर को पकड़े, अरे अच्छा 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 समझ गया, पिलार है और क्या, पिलार को हाथी कहते हैं, मुझे अभी समझ में आ गया, कंफर्म, झूठ नहीं बोल रहे हैं, प्रत्यक्ष दर्शन करके, छू करके, अनुभव करके सिद्धांत दिए, ऐसा नहीं कि स्पेकुलेशन कर रहे ना, प्रैक्टिकल गए थे, हाथी को पकड़े, छुए, अनुभव करके अपने मता दिए, अपने सिद्धांत कि हाथी तो खंबा है। तीसरे गुरु जी आए थे साइड में, ओ हाथ लगाए पूरा पेट शरीर में, बोले ओ आई गॉट इट, क्या दीवार है, दीवार को हाथी कहते हैं, मैं अनुमान कर रहा था अभी समझ, कन्फर्म यही हाथी है ना, ना गुरु जी यही हाथी है, बस दीवार तो है और क्या, दीवार को हाथी कहते। अब लास्ट मैन था, पीछे गया, वो पूछ पकड़ लिया, पूछ पकड़ कर देखा ही ना, अरे ये रस्सी है, नारियल का रस्सी है, उसी को हाथी कहते हैं। ओ तो पांचों ने पांच सिद्धांत लिखे, स्पेकुलेशन नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकली गए थे हाथी के देखने के लिए और छू करके, अनुभव करके, अपने शिष्यों के साथ थेसिस लिखे, उन्होंने पूरा थेसिस लिखे और सुप्रणयन किए, पांच सिद्धांत एक हाथी के ऊपर निकला। अरे भाई कोई एक सिद्धांत भी सही हो और पांच से दो चार मिला दे, पांचों को पांच मिला दे तभी ना हाथी, एक हाथी के एक अंग के अंग कई वर्णन किए उन्होंने, पूर्णांग नहीं कर पाए, नहीं कर पाएंगे, कैसे जानेंगे ऐसे संज्ञान। तो ऐसे ऐसे हम लोग हैं, अभी तक बड़े बड़े जो जिसको हम दी साइंटिस्ट वैज्ञानिक मानते हैं, वो लोग भी जो सब सिद्धांत दिए हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं कि सबसे पहले ये विश्व की संरचना के बाद में खूब गवेषणा करते हुए कि ये तो क्या बोलते बिग बैंग थ्योरी ऐसे कुछ था, एक धमाका हुआ और उसी में सब निकल गया, और उसी को भी हम लोग खूब माने, पढ़े सुने लिखे, उसी के ऊपर परीक्षा दिए, उसके ऊपर हमारे भी अपने आप को योग्यता माने, 10% आया, और किसको पढ़े लिखे, पूरे कैरियर बवंडर, सारे उसी को भूत कथा पढ़ करके आए, जो पूरा उसके बाद में किसी को पता चला, बोले नहीं ये थ्योरी गलत था, और कुछ निकाले और थोड़े दिन के बाद, अरे वो गलत था, अरे ये गलत थ्योरी के ऊपर पीएचडी कर चुके लोग और उनको लोग मानते हैं कि डॉक्टर साहब कर गए उसी के ऊपर किए थ्योरी। तो यही सही, पूरे सिद्धांत शुरू से गलत है, पूरे समझ गलत है, अंधा जो अंधे के फले वरे अंधे ही होंगे तो क्या करेंगे, सर गड्ढे में जाते। तो इसलिए जब तक इस प्रकार ये वैदिक प्रामाणिक वैदिक सिद्धांत को हम नहीं मानेंगे, भागवत सिद्धांत को नहीं मानेंगे, तब ऐसे ही करते रहेंगे। भगवान के बारे में आजकल पूरे संसार में जितने डुप्लीकेट समन निकला है, सबसे ज्यादा डुप्लीकेसी है भगवान के ऊपर में, क्योंकि बाकी समन में तो कोई ओरिजिनल पता ही है, तो इसलिए डुप्लीकेट पता चलता है, मैं देखा है ये ऑर्गेनिक है डिसऑर्गेनिक है पता चलता, लेकिन भगवान के बारे में ओरिजिनल किसी पता ही नहीं, और डुप्लीकेट तो जानते हैं, केवल ओरिजिनल तो देखे ही नहीं सुने नहीं जानते, क्या करें। अब भगवान के बारे में कोई अगर ओरिजिनल कोई जान भी लिया ना, कोई देख भी लिया ना, वो बोल भी नहीं सकता ना, बोला नहीं जा सकता। भगवत तत्व को अनुभव गम्य है, उनको बोलने के लिए तरीका है, कैसे ऐसा है ना, ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो इसलिए संसार के बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी मानी भगवत तत्व को विचार से बोलते नेति 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 नेति, भाई भाई सारे नेगेटिव है, नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, तो है कैसा बोला नहीं जा सकता। वांग मानस गोचर, उनको आंख से देख नहीं सकते, वाणी से शब्द से बोला नहीं जा सकता, मन से सोचा नहीं जा सकता, तो बोलेंगे इसे लेकिन अनुभव कर सकते हैं। जैसे आत्मा है, ये तो एक छोटा सा पार्टिकल है आत्मा के, भगवान के सैंपल है, हमारा अंदर है स्पिरिचुअल पार्टिकल, आत्मा जिसको कहते हैं। अभी हम लोग को एज 50 साल तक हो चुका है, मतलब 50 साल के पुराना आत्मा है उनके साथ, उन्हीं है, वही है, डील कर रहे हैं क्या कैसे, लेकिन उसके बारे में पता ही नहीं, उसका रूप रंग हिसाब किताब कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता इतने। अरे 50 साल तो इसी कवर में है, नहीं तो अनंत जन्म से है, अभी तक नहीं जान पाए। जब एक छोटा सा अणु मात्र भगवान के एक टुकड़ा को जान नहीं पाए, तो विभू को कैसे जानेंगे, हाउ कैन इट पॉसिबल, असंभव है, जाना नहीं जा सकता। तो कोई अगर जानने के लिए प्रयास भी करे तभी नहीं जान सकता। एक बार, मैं बार बार कहता हूं, प्रभुपाद जी एक बार कहीं लेक्चर देते थे तो बड़े बड़े विद्वान पुरुष बैठे थे, तो भगवान के तत्व के बारे में बताए, भगवत तत्व की भगवान ऐसे है, संपूर्ण संसार में सब जगह व्याप्त है, सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, लेकिन कहीं पे नहीं है, बिल्कुल सबसे परे है। इस प्रकार के भगवान के जो अचिंत्य शक्ति का वर्णन किए, तो जो लोग आजकल के विद्वान है वो तो पूछेंगे क्वेश्चन, स्वामी जी क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन ना, स्वामी जी आपने वर्णन किए कि कृष्ण सर्वत्र है, सब जगह में है, सब होने की वजह से है, सबका स्रोत वही है, वो सबसे परे है, कहीं नहीं है, बिल्कुल अलग है। आई कांट अंडरस्टैंड इट, हाउ कैन इट पॉसिबल। प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में बता रहे थे, अंग्रेजी में क्वेश्चन पूछा, मैं समझ में नहीं आ कि, तो प्रभुपाद जी ने बोले सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट यू कैनॉट अंडरस्टैंड दैट, आपको यही समझ लेना चाहिए कि मैं समझ नहीं सकता, अगर ये समझ लिया देर यू अंडरस्टैंड समथिंग। तो हमारा यही स्थिति है, वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी कैनॉट अंडरस्टैंड। अगर हम बोलेंगे हम उसको समझ ले करके, तो माना जाए कि अब मूर्ख है, नहीं जान सकते, कोई नहीं समझ सकता भगवान को ना। आज से 5 साल पहले जगन्नाथपुरी के हेड प्रीस्ट के रूप में सार्वभौम भट्टाचार्य थे, और तत्कालीन उसी समय में संपूर्ण भारतवर्ष के नंबर 1 विद्वान व्यक्ति माना जाते थे, सारे संप्रदाय के लोग उनको नमन करते थे, इतने बड़े भारी विद्वान पुरुष थे। और भगवान उनको, भगवान तक हाथ नहीं लगाया, भगवान की भक्त था, गोपीनाथ था आचार्य जी, जो उनके रिलेटिव था, साला था उनका, उनका जो बातचीत हुआ महाप्रभु के बारे में, तो गोपीनाथ बोले आप क्या समझ रहे थे, वो ईश्वर है, सार्वभौम अड़ गए, उनके स्टूडेंट भी थे, वो अड़ गए, बोले कैसे उनते ईश्वर है, कैसे मान सकते, युक्ति हुआ। और सार्वभौम भारी विद्वान थे शास्त्रार्थ, तो उनको धमकाया, बोला गोपीनाथ तो मेरे साथ युक्ति करता है, शास्त्रार्थ मेरे साथ करना चाहता है। गोपीनाथ बोले तुम साले है, तुम्हारा साथ में क्या शास्त्रार्थ, मुझे पता है तुम उद्भट विद्वान हो, तुम्हारा साथ शास्त्रार्थ में कर नहीं सकता, मेरे भी टाइम खराब करने के लिए इच्छा ही नहीं, फायदा ही नहीं, क्योंकि जो आपके जैसे विद्वान के बारे में शास्त्र में ही लिखा है, क्या लिखा है शास्त्र में ना, शास्त्र में लिखा है कि शास्त्र ज्ञान के द्वारा भगवान को जाना नहीं जा सकता, अतु शास्त्र ही तो पढ़ा है, तो भगवान को कैसे जान सकता, जस्ट बाई बुक नॉलेज, शास्त्र ज्ञान के द्वारा भगवान को जाना नहीं जा सकता, यह शास्त्र में लिखा है। तो सार्वभौम तो और गर्म हो गया, उनके स्टूडेंट के सामने ही इसी उनको अपमानित बात कहता है, बताओ, बोला हम शास्त्र शास्त्र में लिखा है भगवान त्रिजुगी है, ये है कलिजुग में होते नहीं, बोला अरे मूर्ख कहेंगे, यही तुम्हें बता रहा हूं, शास्त्र में मुख्य शास्त्र है महाभारत भागवत पढ़े नहीं, कई बार पढ़े होंगे लेकिन पढ़ने से क्या होगा, पढ़ने से भी उमिट के होंगे, नहीं समझ में आया। भारत में महाभारत भीष्म पर्व में जो भगवान की सहस्र नाम उन्होंने बोले तो इसमें एक आया है चैतन्य महाप्रभु के बारे में, सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांग स्नांगदी संन्यास सम शांत निष्ठा शांति परायण। सुवर्ण वर्ण हेमांग बोले कौन से भगवान है, सुवर्ण वर्ण है हेमांग है, संन्यास कृत कौन भगवान संन्यास लिए अब तक बताओ, यही तो है। आप उसको पढ़ा आपने, जानता भी इसके ऊपर कमेंट्री लिखा हुआ, लेकिन नहीं समझ पाए। भागवत में कई जगह में लिखा लेकिन उसको नहीं, क्यों, मैं तो पढ़ा हूं भागवत, हम तो पढ़ा है, मैं मना थोड़ी करता हूं, लेकिन वही भागवत में लिखा है कि इनके कृपा के बिना केवल शास्त्र ज्ञान से उनको समझ नहीं सकता, तो तेरा दोष नहीं है, ये शास्त्र में लिखा है, मैं तुझे क्यों गाली दूंगा। सार्वभौम बिल्कुल है, जा जा तू मेरे भेणे हे करके रिलेटिव, नहीं तो अभी तुझे ऐसे युक्ति करता ना, मैं भी टाइम नहीं खराब करता हूँ युक्ति के साथ, केवल इतने बोल करके जाता हूँ ये जो जिनको अब मान नहीं रहा है उनके कृपा हो जाए ना तो उसी दिन आपकी समझ में आ जाएगा। ये अब तक तो केवल शास्त्र ज्ञान पोथी से पढ़ा ना, यही समझ है आपको, व्याकरण शास्त्र सिद्धांत यही सुबह पढ़ा आपने, पढ़ रहा पठन पाठन कर रहा है, उससे नहीं समझ पाएगा। अगर उनकी कृपा हो जाए ना तो टाइम ना लगेगा, आप ही खुद जो मैं बोलता हूं वही बात कहेगा और उसको समय नहीं लगा, जस्ट इन वीकेंड एक हफ्ता के अंदर अब भगवान ने कृपा कर दिए, कृपा करिए पूरा हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया उनका, माने ओपन हार्ट सर्जरी तो जाना पड़ता है, एनेस्थीसिया लगाना पड़ता है, काटपीट करना, कुछ भी नहीं किया, टच भी नहीं करे, विदाउट टच भगवान ने ऐसे ऑपरेशन किए हृदय को कृपा कर दी, और ऐसे समझे सार्वभौम ने, ऐसे भगवान की माने कि सारे फिलोसफी चेंज हो गया उनके लिए। अरे फिलोसफी तो शास्त्र को जहां सिद्धांत बदले, आपने स्वरूप में उनका हेडलाइट बदल गया, क्योंकि पहले सार्वभौम में ऐसा थे, उनका स्पॉटलाइट ऐसा था, ओरिजेंटल था, अब एक हफ्ता के बाद वर्टिकल हेडलाइट बदल गया। जो देखे वो बोले प्रद्युम्न मिश्र काशी मिश्र बोले पंडित सार्वभौम ये क्या हो गया आपका, ये बिल्कुल ये चेंज साइज चेंज हो गया, गले में हमेशा बड़पन्ना है ना, हमेशा सोने और चांदी के मोटे मोटे कंठी डालकर घूम रहे थे, अब सारे उतार के तुलसी कंठी डालकर घूम रहे, लकड़ी का सूखा लकड़ी का कंठी, बोले हो क्या गया सार्वभौम जी, आप इतने बड़े महान पुरुष ही सब अहंकार उतार करके ये साइन चेंज कर दिए, इशू क्या है, एक हफ्ता का जस्ट इन वीकेंड ये है। तो बिना भगवान की कृपा से भगवत ज्ञान असंभव है समझना, तो इस प्रकार भगवान और भागवत आइडेंटिकल है, वही सेम है, तो भागवत को समझने के लिए न तो टीकाया न विद्वता, ना भागवत को समझने के लिए कोई ज्यादा विद्वान चाहिए, कोई व्याकरण ज्ञान चाहिए, संस्कृत भाषा ज्ञान चाहिए, नहीं समझा जा सकता ना। भागवत पढ़ गया भागवत स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे, तब जाकर समझ सकता, भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न चटीकया न सुभाष, बाकी किसके द्वारा नहीं समझा सकता, केवल भक्ति के द्वारा समझा सकता है, भक्त्यांग भागवत ग्राह्य भगवान केवल भक्ति के द्वारा, केवल भक्ति के द्वारा प्रविष्ट ज्ञान सृष्ट आपको जान सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनके पास जा भी सकते हैं, ओनली भक्ति के द्वारा, भगवत कृपा के द्वारा, भगवत कृपा ही तो भक्ति, नहीं तो और कोई उपाय नहीं। तो यही भगवान के यहाँ आविर्भाव का वर्णन भगवान वामन देव का आज प्रादुर्भाव हुआ है, किस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ है वो कहने से पहले सुखदेव कहते हैं मैं क्या कहूं, ब्रह्मा जी आकर बोलकर गए उनके बारे में, अभी उनका अपीयरेंस नहीं हुआ था, बिना जन्म होने से पहले फोरकास्ट ब्रह्मा आकर करके गए ब्रह्मलोक से, अब उसके बाद वो जब प्रकट हुए अभी सारे देवता फिर आएंगे आरती उतारने के लिए, उनके पूजा करने के लिए, और बाकी हम लोग अब तक तो फास्टिंग भी करते हैं वामन द्वादशी को, हाँ करोड़ों जन्म के बाद भी करते हैं, पहले भी बाद में उस समय में, भगवान नित्य है, इसलिए अमृत भू, वो हमेशा अमृत जैसा रहते हैं, वो मृत नहीं है, किंतु भगवान है। उनके आयुध, उनके कर्म, उनके गुण, उनके वस्त्र, उनके तेज, सब कुछ उनके साथ हमेशा रहता है, चाहे शिशु बने, बड़े बने, छोटे बने, चाहे जन्म हो चाहे जन्म न हो, कुछ भी करो, कुछ भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में, वो भगवान भगवान है, भगवत पद से कभी नीचे, इसीलिए तो इनको अच्युत कहा जाता है, इनफालिबल, कभी उनका इस स्थिति से विकार नहीं हो सकता, असंभव। तो इस प्रकार आज उनके सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान रावण देव का प्राकट्य हुआ। इसी प्रकट तिथि में ही प्रकट श्लोक में हम समझ लेना चाहिए कि भगवान और हम में क्या अंतर है, भगवान क्या है। भगवत ज्ञान इसी में ही दिया गया कि भगवान हमेशा भगवान है, भगवान हमेशा उनके आयुध, उनके शक्ति, उनके वस्त्र, उनके सब कुछ दिव्यता उनके साथ रहता है। और जब जन्म होते हैं माँ के घर में, छोटे शिशु के रूप में, तब भी भगवान, कर्म करते हैं तभी भगवान, आपने धाम में रहते हैं तभी भगवान। तो इसलिए भगवान के जन्म को साधारण जन्म नहीं जानना चाहिए। श्री वामन देव भगवान की, श्री वामन अवतार की, समवेत भक्त वृंद की, गाय गौर हरि प्रेमानंद। एनी क्वेश्चन और कमेंट? यस। स्वर्ग का एक शब्द अमर कुछ पढ़े नहीं ना, स्वर्ग का अर्थ वैकुंठ भी है, वैकुंठ का एक नाम भी स्वर्ग है ना। और कुछ? हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की।